श्रोता ओगदाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज शर्मिकवाणी श्रोताओं में शराम कुलिंग वार्ड नंबर 246 थाना खजूरी खास से आपको अपडेट कराता रहता हूं। श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट, लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पेशे से वकील हैं और बात होगी दिल्ली सरकार के खिलाफ संसद भवन में राज्यसभा में प्रस्ताव आया और वो कैसे उस पर बात करेंगे।
मोदी साहब जिस तरह से अभी देश के हालचाल चल रहे हैं उसमें पहले हम बात करेंगे दिल्ली सरकार में जो अधिकार है लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद में केंद्र सरकार अध्यादेश लाए और अब कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा उसको पास करा लिया। ऐसे में जनता का क्या हाल होगा सब चर्चा चाहते हैं।
देखिए पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जमीन पुलिस जैसे मामलों पर केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी शासन करेंगे और जो ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ बिजली पानी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पर दिल्ली सरकार शासन करेगी। तो मैं समझता हूं कि उसको जो है भारत सरकार को रिस्पेक्ट करना चाहिए था और अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था और अध्यादेश चूंकि उनकी संख्या बल संसद में भी है राज्यसभा में हो गया तो बिल पास होना था।
राज्यसभा की बात करें तो उसकी उनकी 105 संख्या है हाँ। सत्ता पक्ष के बाद लेकिन विपक्ष में 129 है उसके बावजूद भी दोनों का उल्टा हुआ। सत्ता पक्ष जो जो प्रस्ताव विपक्ष है केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार के पक्ष में 102 105 वोट ही पड़ पाया उनके पास 129 वोट पड़ पाए 131।
देखिए ऐसा है कि कुछ पार्टियां जैसे BJD और KCR तेलंगाना के और आंध्रा की जो पार्टी है वो डर के या बिना डर के हम तो समझते हैं जो BJD है नवीन पटनायक जी वो पता नहीं क्यों किस कारण BJP को समर्थन किए हालांकि उनका कोई घोटाला ऐसा नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा BJP का समर्थन करना हास्यात्मक लगता है और जो KCR हैं हालांकि वो सेंटर के बहुत खिलाफ थे लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया उनका ये भाजपा का समर्थन किए तो ऐसे में जहां पर डर की बात रहेगी वहां पर लोकतंत्र हारेगा जहां पर सम्मान की बात रहेगी वहां पर भले उस पार्टी के लोग जेल में जाए लेकिन वहां लोकतंत्र जीतेगा जैसा लालू यादव जेल गए लेकिन उनके माध्यम से लोकतंत्र आज भी बिहार में जीवित है उनको कोई नहीं कर सकता भले वो परेशान है उनके परिवार के लोग परेशान है लेकिन लोकतंत्र को जीवित रखे हैं और लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे डटकर मुकाबला कीजिए। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब राज्यसभा में बहस हो रहा था तो गृह मंत्री जी ने बड़ा ही तार्किक प्रश्न देश की जनता के सामने लाए वो ये लाए कि 2016 से लेकर के अब तक दिल्ली सरकार कोई कानून बनाने के लिए कोई अपना सदन नहीं चलाई वो सिर्फ 2016 से लेकर के अब तक साल में एक बार बजट पास करने के लिए उन्होंने ये सदन चलाए विधानसभा लेकिन कोई कानून नहीं बनाए। तो इस पर लोक समाज पार्टी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 2016 से लेकर के अब तक विधानसभा के जितने भी विधायक हैं उनका पूरा वेतन वापस होना चाहिए। आप विधानसभा में जाते हो किसी भी विधानसभा में कोई विधायक चुनकर जाता है उसका पहला दायित्व है कि उस प्रदेश की जनता के संदर्भ में उनके हित के लिए कानून बनाए। क्योंकि दिल्ली के विधायक जितने भी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या ये अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दोनों ने कानून बनाने के पहल के संदर्भ में कोई काम नहीं किया, इसलिए इन सभी से वेतन वापस लेना चाहिए। अब थोड़ा इसमें पेचीदा मामला है कि जब एक जगह सेंटर की सरकार है और वहीं पर विधानसभा, अगर आप विधानसभा दे रहे हो तो इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस अध्यादेश को ला करके फिर उन्होंने कानून बनाया, वो नहीं होना चाहिए। दीजिए तो आप पूर्ण रूप दर्जा यानी उनका हक दीजिए, नहीं तो ये विधानसभा होनी ही नहीं चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में सिर्फ सेंटर की सरकार और कॉरपोरेशन सफिशियंट है, जैसा कि पहले भी होता था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय प्रदेश इस दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश और नेहरू जी में टकराव हुआ तो तभी से विधानसभा भंग कर दी गई थी, नहीं थी। ये तो मदन लाल खुराना जब भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया और 93 में अपना, उसके पहले 91 से लेकर के 96 तक उनकी नरसिंह राव जी की सरकार थी, उन्होंने रिस्पेक्ट किया और 93 से यहाँ फिर विधानसभा बहाल हुई। लेकिन ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 2016 से लेकर के आज हम 2023 में चल रहे हैं, 7 साल यहाँ के विधायक मुफ्त में पैसा ले रहे हैं, कोई दिल्ली की जनता के लिए कोई कानून नहीं बनाए, बल्कि 5 करोड़ जो भी साल का फंड है वो अपना उसमें कमीशन ले रहे होंगे। शायद ही कोई विधायक होगा जो अपने विधायकी फंड से कमीशन नहीं ले रहा होगा।
जब हमारा सवाल है वही कि ये अध्यादेश पास होने के बाद में कानून बन गया कि जो अधिकार है वो सारे अधिकार
सेंटर के पास चला गया,
सेंटर पास चले गए, ऐसे में विधायक कैसे काम कराएंगे अधिकारियों से, या है कि सरकार कैसे काम कराएगी, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारे काम तो LG साहब करेंगे, तो सरकार कैसे चल पाएगी, जनता किधर जाएगी?
तो जनता देखिए ऐसा है ना कि मैं तो समझता हूँ कि इस जो है इस विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। जब आप दिल्ली की जनता के लिए जो विधायक हैं उनकी सरकार को कोई अधिकार ही नहीं दिए हैं तो फिर काहे को इनको चुपचाप रखे हो पाए, वो बार बार दिल्ली की जनता पे कर रहे हो। वो कमिश्नर के माध्यम से जो नगर निगम का है वो और LG के माध्यम से शासन चलेगा। मैं तो अब नहीं समझता हूँ, जब ये बिल पास हो गया तो काहे विधानसभा करो, खत्म करो इसको, दिल्ली की जनता पर बर्डन नहीं होना चाहिए। जी
दूसरा सवाल था कि जिस तरह से विपक्ष केंद्र सरकार में विश्वास प्रस्ताव लेकर आया और फिर वो गिर गया और प्रधानमंत्री ने बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी, लेकिन मणिपुर का जो बड़ा सीमित शब्द समय निकाला, तो विपक्ष की रणनीति कितनी कामयाब मानती है?
देखिए आज मणिपुर के संदर्भ में 3 मई का जो घटना हुई शुरू वहां से और अब तक आज 100 यानी 100वां दिन चल रहा, खत्म हो रहा। 100 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के पहले मणिपुर के जो है उसमें मां भी ये कहने को तैयार नहीं थे। देश विपक्ष की जो इंडिया का संगठन है वे बधाई के पात्र हैं, कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री को जो मणिपुर के संदर्भ में एक अक्षर नहीं बोलना चाहते थे और सदन में नहीं आ रहे थे, उनको सदन में लाने को, सदन में आने को मजबूर कर दिया। ये है अविश्वास प्रस्ताव का एक बहुत बड़ी जीत है। वे जानते थे कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर जीत नहीं पाएंगे, उनकी संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया और प्रधानमंत्री को संसद में आने को मजबूर कर दिया। अब रही बात मणिपुर के संदर्भ में, यहां पर देखिए आपको मैं बता दूं, यहां पर बहुत बड़ी गहरी चाल है कि 2010 में और 2018 में मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर लगभग करीब करीब कुछ नहीं तो 6000 अरब क्यूबिक तेल की संभावना है। और वहां पर हॉलैंड की एक कंपनी है जिसको वहां पर तेल सर्वे करने का उनको ठेका दिया गया है। तो 2010 में और 2018 में दो ब्लॉक का वहां पर सर्वे हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उस कंपनी को तेल निकालने के लिए वहां के जो पहाड़ी इलाके पर आदिवासी हैं उनको खाली कराने के लिए ये प्रपंच रचा गया। और सरकार चाहती तो 4 मई को ही वहां पर शांति स्थापित हो जाती। तो शांति स्थापित करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य वहां पर वहां के आदिवासियों को हटा करके उस पहाड़ी क्षेत्र से तेल निकालना है। और उस पर भी वहां पर जो घटना घटी यह देश के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है जिसको भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, गृह मंत्री अमित शाह कुछ भी करें, लेकिन वो कलंक नहीं मिटाया जा सकता है जो 4 मई को कुकी समुदाय के दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया। पुलिस वहां मुख दर्शक रही। और यही नहीं, उसके बाद जो पीड़ित पक्ष थे उनको FIR दर्ज करने के लिए नहीं किए तो उस पर कार्रवाई नहीं किए। ये देश का सुप्रीम कोर्ट, खास करके इस देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी बधाई के पात्र हैं कि जो इस सामंतवादी और तानाशाही सरकार के जबड़े में रह करके DY चंद्रचूड़ ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, सरकार को लताड़ लिए और उनको एक प्रकार का चेतावनी दिए। जब अगर ये चेतावनी नहीं दिए होते तो मणिपुर के संदर्भ में जो न्याय की प्रक्रिया अब थोड़ा आशा जगी है वो नहीं हो पाता।
हमारे सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री इतना लंबा स्पीच दी, उसके बीच में भी बहुत कम समय
देखिए
मणिपुर को।
हाँ, देखिए
और दूसरी घटना जो हरियाणा है जहाँ की डबल इंजन सरकार है मणिपुर की तरह, वहां भी घटना घटी, वहां भी मकान टूटे, वहां भी FIR हुई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोला। देश में एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरा विपक्ष को आवाज करता तो उसको राजनीति से जोड़ देते हैं।
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब से 26 मई 2014 से सत्ता पाई है तो उनका एक प्रकार का धर्म और कर्म बन चुका है कि इस देश की जनता को गुमराह करो। वहां पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो कहीं भी देखे होंगे, जब भी कोई किसी चैनल से या कोई बात आई है तो उस मेन मुद्दे पर चर्चा ना करके अलग अलग बातों पर वो चाहे भाषण दिए हों, चाहे आज संसद में बात रही हो या इसके पहले वो संसद में बोले हों, वो यही किए हैं। जबकि ऐसा करना इस देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं हो है। उनको चूंकि मणिपुर के संदर्भ में और जो आज देश में आग लगी है उस पर चर्चा करना चाहिए था, उस पर उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि कैसे इस देश में अशांति जो फैली, कैसे इसको शांति में बदला जा सकता है, किससे चूक हुआ है, कहां गलती हुई है, आगे कोई गलती ना हो, आगे कोई चूक ना हो, उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन उनको इस देश में शांति स्थापित नहीं करना है, उनको इस देश में अशांति, गुमराह, धर्म पाखंड वाद में इस देश को फंसा करके, लोगों का माइंड डाइवर्ट करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके 2024 में सत्ता पाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको लोक समाज पार्टी के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आप लोग इनके बहकावे में, इनके प्रपंच में मत आवे। आपका जो बच्चों का भविष्य है, स्कूल है, अस्पताल है, सरकारी नौकरी है, निजीकरण, ठेकेदारी के खिलाफ आप आगे आइए। ये तभी आप सफल हो पाएंगे जब इस देश की पार्टी जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, इसको 2024 में बुरी तरह से बेदखल करेंगे, तभी इस देश में लोकतंत्र सफल हो पाएगा, जिंदा रह पाएगा। और इस हमारे देशवासियों का जो शिक्षा है, रोजगार है, व्यापार है, भाईचारा है, समानता है, सामाजिक न्याय है, यह आगे बरकरार रह पाएगा।
सिर्फ हमारा सवाल था कि क्या आज के प्रस्ताव है जो विपक्ष लाया, उसकी जी हार के जीत हुई है या हार के भी हार हो गई है?
देखिए, यहाँ पर विपक्ष गलती किया है, मैं इस पर स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जब आप विपक्ष के लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन इस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए थे, तो आप लोगों को जो वॉकआउट कर दिए हैं, वो अपनी खुद गरिमा गिराए हैं। उनको जो समय मिला था, उस समय के इस्तेमाल करते हुए जो वहां पे सांसद थे, उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए था कि आप लोग भले सत्ता पक्ष में हो, लेकिन देश के हित में आप विपक्ष के मतदान में आप आइए, मोदी सरकार के खिलाफ आइए। कोई तार्किक ढंग से बात किए होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों की बात कहे होते, तो हो सकता है कि उन्हीं पक्ष वालों में से बहुत सारे लोगों का दिमाग, दिल बदलता और मोदी का के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होते। मोदी का प्रस्ताव जो मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता और ये सत्ता से बाहर होते। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे, वो तो आउट कर दिए, वो तो अपना पीठ दिखा करके भाग गए। ये तो मैं समझता हूँ गलत है। हाँ, इस बात की मैं सफलता मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो संसद में आना नहीं चाहते थे, वो संसद में आने को मजबूर हुए। अगर ये विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाए होते, तो नरेंद्र मोदी इस मानसून सत्र में एक सेकंड के लिए भी उपस्थित नहीं होते।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे गौरी शंकर शर्मा एडवोकेट, बता रहे थे सभी बातों को। तो श्रोताओं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे राय देना है, हमारे टोल फ्री नंबर 9211153555 पर मिस कॉल करें। लैंडलाइन नंबर 3 लगा के अपने